तो आप सब भक्तों का द्वादशी के दिन हार्दिक स्वागत है। कल की एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी थी, तो आप सबको सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे कि आप में से कितने भक्तों ने करने चला एकादशी रखी थी। लेकिन लगभग सभी ने, तो सब शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से संभव हो पाया, और आप सब भक्तों को विशेष बधाई। कल की एकादशी का बहुत महत्व था, और बोला जाता है कि अगर कोई भक्त इसको प्रयास करके रख लेता है, पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करता, तो उसको पूरे वर्ष के एकादशी रखने का प्रणाम मिल जाता है। तो नॉर्मली एकादशी के बाद द्वादशी और त्रयोदशी के दिन ये दही चूड़वा उत्सव आता है, लेकिन इस बारी द्वादशी के दिन दही चूड़वा उत्सव है। और आप में से कुछ भक्त जो सुबह थे मंगल आरती में, और दही चूड़वा का उन्हें प्रसाद भी मिला होगा, तो बहुत ही सुंदर उत्सव है ये दही चूड़वा उत्सव। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बहुत से उत्सव आते हैं, और उत्सव का अर्थ है आनंद। और अधिकांशतः उत्सव होते हैं किसी वैष्णव का तिरोभाव या आविर्भाव, या स्वयं भगवान का उनके अवतार का प्राकट्य। लेकिन उस उत्सव में ऐसी क्या विशेष बात हुई जिसमें भक्तों का आनंद बढ़ा? क्या विशेष बात हुई? सबको दही चिड़वा खाने को मिला। लेकिन दही चिड़वा कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो ऐसी कौन सी विशेष बात थी जिसके कारण इसको उत्सव बोला जा रहा है और पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है? पूरे विश्व भर में आज दही चिड़वा उत्सव मनाया जा रहा है। इस कौन के प्रत्येक केंद्र में दही चिड़वा खा रहे हैं भक्त लोग, और इस कौन के प्रत्येक केंद्र में रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु की कथा का गुणगान किया जा रहा है। ये सब प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से है। तो आज ये कथा बहुत लंबी है और समय भी कम है, तो कुछ इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते ही हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी छठ गोस्वामियों से प्रमुख गोस्वामी हैं, और श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमारे लिए 12 महाजन तो हैं जो कि भागवतम के छठ स्कंध में बताए गए हैं, लेकिन ये 6 गोस्वामियों का जीवन भी हमारे लिए अनुसरणीय है, और ये 6 गोस्वामी भी हमारे लिए महाजन है। आप में से अधिकांशतः लोग गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तो जब बोला जाएगा कि 6 गोस्वामी हमारे लिए महाजन हैं, उनके बताए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, तो ये विचार आते मन में कि 6 के 6 गोस्वामी सब वैरागी थे, राधा कुंड में रहते थे या वृंदावन में रहते थे, तो हमारे लिए बात नहीं हो रही, ये ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए बात हो रही है। ये प्रभुपाद विशेषकर बताते हैं कि चाहे कोई किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो या सन्यास आश्रम में हो, गौड़िया वैष्णवों को रूपानुगा बोला गया है, रूप गोस्वामी के अनुगत, तो ये जो गोस्वामी गण है ये हमारे लिए महाजन है, और महाजन ये कथाओं से पंथ था, और जैसा महाजनों ने हमें अपने जीवन से के उदाहरण से सिखाना चाहा है, उस उदाहरण को हमें समझना चाहिए और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। 6 गोस्वामियों में से कितने गोस्वामी गृहस्थ आश्रम में रह चुके थे और कितने सीधा ही ब्रह्मचारी थे, किसी को मालूम है? रूप गोस्वामी जी गृहस्थ आश्रम में थे, सनातन गोस्वामी जी गृहस्थ आश्रम में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी गृहस्थ आश्रम में थे, जीव गोस्वामी जी का कहीं वर्णन आता नहीं है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था कि आप विवाह मत करें, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी सीधा वृंदावन आ गए थे, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था, तो कम से कम 3 तो गृहस्थ आश्रम में थे। जीव गोस्वामी के विषय में हम श्योर नहीं है, कहीं ऐसा वर्णन आता तो नहीं है गृहस्थ आश्रम में थे कि नहीं, तो कम से कम 3 गोस्वामी तो निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम में थे, वो घर त्याग कर वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में गए। तो बहुत रोमांचकारी कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत धनाढ्य परिवार से थे, उनके पिता जमींदार थे, जमींदार सप्तग्राम के, और उनका नाम था गोवर्धन मजुमदार, और उनके चाचा भी थे, उनका नाम था हिरण्य मजुमदार, बहुत धनाढ्य परिवार से थे। और ये दोनों भाई जो थे काफी पुण्य आत्माएं थी, तो अपने गांव में कथा कराते रहते थे, भक्तों को बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे, तो ऐसे ही उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बुलाया, एक भगवान दास एक भक्त थे वहां बुलाया, और हरिदास ठाकुर जी कथा करते थे, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करते थे, और साथ में जाते थे सुनने, और साथ में چھوٹے سے رکھناتھ کو بھی لے کے جاتے تھے. رکھناتھ بھی سنتے تھے, ان کے پتا جی بھی سنتے تھے, چاچا بھی سنتے تھے. پتا جی چاچا پہ تو کوئی اثر پڑا نہیں. رکھناتھ جی گورانگ مہاپرو کی لیلاؤں سن کر ان سے بہت آسکت ہو گئے, اور بچپن سے ہی گورا گورا گورانگا گورانگا کہہ کے وہ روتے رہتے تھے. ماتا پتا پریشان ہو گئے, کیا ہو کیا رہا ہے, لیکن وہ جانتے نہیں تھے. ایک شدھ بھکت کے مکھ سے شرون کرنے ماتر سے ہی ان کے ہردے میں, رگھناتھ جی کے ہردے میں آسکتی اتپن ہو گئی چیتنیہ مہاپربھو کے پرتی. پرشن یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہرن مجومدار گوودھن مجومدار نے کتھا آرگنائز کراتے تھے, وہی لے جاتے تھے, ان کے ہردے میں کیوں نہیں پریورتن ہوا اور رگھناتھ جی کے ہردے میں پریورتن ہو گیا. دوسرا ادھارن کوئی اور ہے ایسا شاستروں میں, کیادھو جی کا, ہرن کشپ کی دھرم پتنی کیادھو, ان کے گھر میں کون تھے, پہلاد مہاراج. کیادھو جی نارد منی کے آشرم میں رہی, ایک برہمچاری تھے نارد منی, بال برہمچاری ہیں. کرنا مہیش انہوں نے ایک ایسا ادھارن دیا کہ استری کو اپنے آشرم میں رکھا, شرن دی اور پرسنل کاؤنسلنگ کی, ان کو ساری بھاگوتم سنائی. لیکن نارد منی کا لکش وہ ماتا جی نہیں تھی, ان کے گھر میں جو پہلاد بھکت تھے وہ ان کو پورا سنا رہے تھے. اب ماتا جی نے بھی سنا, لیکن ماتا جی کے ہردے میں کوئی بھکتی پرکٹ نہیں ہوئی, اور پہلاد تو ان کو ملے بھی نہیں نارد منی کو, اور سارا سندیش سن کر پہلاد ایک دم شدھ بھکت. کیا ہے کارن, کیا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سن کر ایسا نہ کریں گے ہم اپنے بچوں کو کتھا میں نہیں لے کے آئیں گے. کیا کارن ہے؟ ابھی بھی اسی لیکچر میں پربھوپاد جی نے بولا ہے, ہاں فیملی اٹیچمنٹ. فیملی اٹیچمنٹ بھکتی کے لیے سب سے بڑی بادھا ہے, سب سے بڑی بادھا ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے ہرن مجومدار اور گوودھن مجومدار حالانکہ سب بھکتوں کی سیوا بھی کرتے تھے, جب انت میں مہاپربھو کو پورا سرنڈر کر دیں گے رگھناتھ داس گوسوامی, تو ہرن مجومدار اور ان کے وشے میں مہاپربھو بہت ہی وشیش بات کہتے ہیں. جب رگھناتھ داس گوسوامی جی فائنلی پوری پہنچ جاتے ہیں اور چیتنیہ مہاپربھو کی شرن گرہن کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں. ایکچولی رگھناتھ داس گوسوامی بہت ہی دھناڑے پریوار سے تھے, اور جب وہ گورانگ مہاپربھو کہہ کے روتے رہتے تھے اور گھر چھوٹے بچپن میں ہی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, اور ان کے پتا جی بڑے امیر تھے, دھنی تھے, ان کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے, چونکی دار پکڑ کے لاتے تھے, رسیوں سے باندھ دیتے تھے, پھر وہ بھاگ جاتے تھے, پھر پکڑ کے لاتے تھے, یہ چلتا جا رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کیا کریں, ابھی پریشان ہو گئے بالک, یووا ہو رہا, کیا کرنا چاہیے اس کو باندھنے کے لیے, نیچرل چیز کیا ہے, وواہ کر دو. اور بہت سندر پتنی, اپسرا سمان سندر پتنی, اندر جیسا ان کا راجے, اپسرا جیسی سندر پتنی, چلو اب تو یہ بن جائیں گے. لیکن تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور وہ انت میں نتیانند پربھو کی کرپا پراپت کر کے مہاپربھو کی انہوں نے شرن گرہن کر لی. جب مہاپربھو کی شرن گرہن کی تو مہاپربھو نے کیا بولا, پربھو کا ہے کرشن کرپا بلشٹ سبا ہیتے, تمہارا کاڑیلا وشیا وشٹھا گرت ہیتے. چیتنیہ مہاپربھو نے کہا, بھگوان کرشن کی کرپا سب سے پربل ہوتی ہے, اس لیے بھگوان نے تمہیں بھوتک وادی جیون کی کھندک سے ابار دیا ہے, جو اس چھید کے سمان ہے جس میں لوگ مل بہاتے ہیں. چیتنیہ مہاپربھو نے اس سنسار کی تلنا کس کے ساتھ کی ہے, اس چھید کے ساتھ جس میں لوگ مل بہاتے ہیں. بولے کرشن کی بڑی کرپا ہے تم اس مل سے باہر نکل کے آ گئے ہو. چیتنیہ مہاپربھو کہہ رہے ہیں, پربھوپاد جی کہہ رہے ہیں, چیتنیہ مہاپربھو کس چیز کو بول رہے ہیں, وہ چھید جس میں لوگ مل بہاتے ہیں, رگھناتھ داس ٹھاکر جی کا محل, ان کا دھن, اور اپسرا سمان سندر پتنی, اس کو مہاپربھو کہہ رہے ہیں وہ چھدر کے سمان ہے جس میں لوگ مل بہاتے ہیں. تو ہم لوگوں کا چھوٹا سا برہمچاری آشرم کا ایک کمرہ, یا ایل آئی جی فلیٹ, یا ایم آئی جی فلیٹ, یا بہت بڑا بنگلہ, اس کے آگے کیا ہے. یہ مہاپربھو سیدھا بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں, تمہار باپ جیٹھا وشیا وشٹھا گرتے رکیڑا, سکھ کری مانے وشے وشے رے مہا پیڑا. اس کو برا مت مانیے, باتیں یہ مہاپربھو بتا رہے ہیں رگھناتھ داس کو, سوامی جی کو, اور کچھ باتیں بڑی کڑک ہیں. وہ بتا رہے ہیں, ہے رگھناتھ داس, تمہارے پتا تتھا تاؤ بھوتک بھوگ روپی نالی کے مل کیڑے کے تلے ہیں. क्योंकि जिसे वो सुख मानते हैं वो भौतिक भोग के विषय का महान रोग है। कितनी बड़ी बात बोल दी महाप्रभु ने, एक तरह से गाली दे दी उनको कि वो क्या है, वो मन में पड़े हुए कीड़े। महाप्रभु पीछे बता रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूं कि मेरा उनका कुछ संबंध है, मैं उनको जानता हूं। हालांकि ये लोग पुण्य आत्माएं हैं, इनको वैष्णव नहीं कह सकते, ये वैष्णव प्राय हैं, ये वैष्णव की सेवा भी करते थे, पुण्य आत्माएं थी, लेकिन फिर भी परिवार से बहुत सारा आसक्त है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की इस कथा में हम देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत दृढ़ थे, बहुत दृढ़। भक्ति में डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। बिना दृढ़ता के हमारी भक्ति बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, इसमें कुछ रोमांच नहीं रहेगा, कोई उत्साह नहीं रहेगा। कल आप सब भक्तों ने, हम सब ने निचला व्रत रखा, दृढ़ता दिखाई है ना, और आज सुबह जब जल ग्रहण किया तो हमें लगा भगवद्गीता का जो सातवें अध्याय में श्लोक है, रसोहम अपसु कौन्तेय, भगवान कहते हैं जल का रस मैं हूं। तो पहली बार हमें रियलाइज हुआ कि वास्तव में भगवान इस जल का रस है, और कितनी खुशी हुई कि सब भक्तों के सहयोग से, प्रभुपाद की वजह से हमें निजला व्रत रख सके। सबको तकलीफ होती है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी में क्या होता है, लेकिन सब लगे रहे भक्तों के साथ मिलकर। तो ये आजीवन दृढ़ता चाहिए। ये तो थोड़ी सी तकलीफ थी हमें मालूम है, 5:23 तक की तो बात है, और फिर तो लोगों के घर में एयर कंडीशनर भी होता है, चलो किसी ढंग से एयर कंडीशनर ऑन करके किसी ढंग से टाइम निकल जाए। हालांकि एकादशी का उद्देश्य ये नहीं होता कि एयर कंडीशनर में बैठ के टाइम निकाल दो, 5:30 पे पानी पी लो ठीक हो जाएगा, एकादशी का ये उद्देश्य नहीं होता। एकादशी का उद्देश्य होता है कि सब भक्त लोग मिलकर, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना, कीर्तन करें, कथा करें, लेकिन फिर भी हम लोग ने प्रयास किया। तो दृढ़ता, दृढ़ व्रत, और इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता, हमें दृढ़ व्रत होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने घर से आसक्त हो जाता है, वो दृढ़ व्रत की जगह गृह व्रत हो जाता है, उसने व्रत ले लिया कि इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये जो आसक्ति है इतनी प्रबल है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी दृढ़ व्रत थे। अब देखिए, कल्पना कीजिए, इंद्र जैसा उनका ऐश्वर्य था, पीछे वर्णन आता है उस समय 500 वर्ष पूर्व उनके पिताजी और चाचा जो जमींदार थे कलेक्शन करते थे, 20 लाख सोने की मुद्राएं कलेक्ट करते थे, 500 साल पहले 20 लाख सोने की मुद्राएं कलेक्ट करके उनको 5 लाख मुद्रे अपने पास रखनी होती थी और बाकी 15 लाख सरकार को देनी होती थी। 5 लाख मुद्राएं तो उनकी नेट कमाई थे, 5 लाख मुद्रे आफ्टर टैक्स डिडक्शन, 5 लाख सोने की मुद्राएं, असली सोने की, गोल्ड प्लेटेड नहीं, बताइए। इतना धन और इतनी सुंदर पत्नी, इतने कंफर्ट्स, ऐश्वर्य, उसके बाद भी रघुनाथ जी बिल्कुल अनासक्त। और उनको बताया गया है कि ये जो जितने भी सुख थे वो कांटों की तरह चुभते थे। प्रभुपाद कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल महसूस कर रहा है या कंफर्टेबल बनना चाहता है, वो पशु तुल्य है, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। हम कभी भी ये ना सोचे, हम देखते हैं कई बारी भक्त आते हैं और दूसरे भक्तों को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है इन भक्तों के लिए भक्ति करना कितना आसान है, मैं बसों में धक्के खाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, टाइम ही नहीं मिलता चैंटिंग करने का, तो गाड़ियां होनी चाहिए, फिर कंफर्टेबली आराम से एसी चलाकर जप करेंगे, क्या आनंद आएगा उससे, है ना। तो हमारे अंदर इच्छा रहती है नहीं, महाप्रभु के भक्तों में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। महाप्रभु के एक भक्त ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी, एक थे खोला बेचा श्रीधर, जिनकी धोती में 22 छेद होते थे। महाप्रभु ने ऑप्शन में दिया, स्वर्ग का राज सुख दे दूं, बोले नहीं चाहिए, मोक्ष दे दूं, बोले नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि जन्मों जन्मों में आप मेरे पास निमाई पंडित बन के आइए, मुझसे केले छीन के चले जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने के लिए भौतिक जगत में कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो जितनी भी हमारे पास ये ऐशो आराम हैं, ये सब बहुत टेम्परेरी हैं। अगर इसमें हम आसक्त हो गए या इसको पाकर हम सोच रहे हैं कि अपने जीवन को हम सुखी बना सकते हैं, तो ये भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधा है। ये रघुनाथ दास जी के जीवन से हम सीखते हैं। कई बार भक्त लोग सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचारी आश्रम में भी आ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इच्छा रहती है कि मैं वो भोग नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, थोड़ी सी इच्छा मैं छोड़ के आया हूं, या फिर बीच में बना रहता कि उसको करके भी आता तो अच्छा था। लेकिन शास्त्र किस लिए दिए गए हैं? यहां पर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर को बोल रहे हैं, उस संसार को बोल रहे हैं, किसके समान है? उस छिद्र के समान है जिसमें लोग मल त्यागते हैं। तो अभी तो अगर हम वैसा चाहेंगे तो हमारा ऐसा साम्राज्य तो होगा ही नहीं। अगर हम बहुत देखते हैं, आप सब देख रहे हैं कि दो वक्त के खाना कमाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, कितने कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ व्यक्ति घर का पालन कर पाता है। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में दृढ़ व्रत होना चाहिए। दृढ़ता से हर भौतिक परिस्थिति में हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मुझे महाप्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, तब हम भक्ति योग में लग पाएंगे। अन्यथा अगर हम ग्रह व्रत हैं तो भक्ति योग की जगह हम देह योग में लग जाते हैं। आत्मा का जब भगवान से मिलन होता है तो भक्ति योग कहलाता है, लेकिन आत्मा जब शरीर से ही मिल जाती है तो देह योग। ये प्रभुपाल लिख रहे हैं, आज के लेक्चर में बता रहे हैं कि शरीर से इतनी आसक्ति और शरीर से जुड़े शरीर के कंफर्ट्स के लिए इतनी आसक्ति, तो देह योग अपने ही सुख, देह के सुख के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बचपन से ही भाग भाग के जाते थे, माता पिता खींच के लाते थे, उनका विवाह भी करा दिया, फिर भी उनको चैन नहीं आया। फिर एक बार शांतिपुर में महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने गए और बोले मैं तुरंत आपके चरणों की शरण ग्रहण करना चाहता हूं। महाप्रभु ने उनको डांटा, बोले ऐसी गलती मत करो, समुद्र को एक ही छलांग में पार मत करो, अभी आप झूठा वैराग्य मत दिखाओ, घर जाओ और एक साधारण गृहस्थ की तरह रहो, समय आएगा तुम्हारे पे कृपा हो जाएगी। तो वापस आए रघुनाथ दास गोस्वामी जी और एक साधारण गृहस्थ की तरह रहने लगे। तो कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने तुरंत क्यों नहीं रघुनाथ दास जी को अपने पास बुला लिया? उनकी भक्ति की प्रगाढ़ता में कोई कमी थी क्या? क्या वो मैच्योर नहीं हुए थे? कई बार हम देखते हैं शिष्य गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, गुरु बोलते हैं ठहरो अभी आप लगे रहो। क्यों? हाँ, गुरु टेस्ट करते हैं कि डिटैचमेंट वैराग्य पूरा परिपक्व हो जाए। एक सड़क में चल रहा भिखारी है, बोला बहुत वैरागी हूं मैं तो मुझे कुछ वैराग्य नहीं है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन वैराग्य की परीक्षा तब होती है जब सारे के सारी भोग की सुविधाएं आपके पास हैं और फिर भी आप उनसे आसक्त नहीं होते, तब वैराग्य की परीक्षा है। तो इसलिए महाप्रभु बोला जाओ रहो एक साधारण व्यक्ति की तरह, घर गृहस्थी के कर्तव्य का पूरा पालन करो। तो इस ढंग से रघुनाथ दास को दिया गया। अब अगर वो पत्नी के साथ रहते हुए बिजनेस करते हुए अब वो वैराग्य वैसा ही वैरागी रहता है, इसका मतलब वो खरा उतरा। तो रघुनाथ दास गए और बिल्कुल एकदम साधारण घरेलू व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू किया। यही कृष्णवज भक्त, वही सही बड़ा चतुर, बहुत चतुरता के साथ उन्होंने बिजनेस मैनेज किया। उनके पिता और उनके चाचा को भी पीछे छोड़ दिया, एक्सपर्ट मैनेजर हो गए। इसे कथा आती है कि जब उनके पिताजी ने 15 लाख सोने की मुद्राएं देनी चाहिए थी सरकार को, उनके अंकल ने उनके चाचा ने कुछ हेरा फेरी कर ली, 15 लाख की जगह 12 लाख दी सोने की मुद्राएं सरकार को वापस, 3 लाख अपने पास रख ली ज्यादा। तो ये एक मुसलमान एक चौधरी थे जो कि उनके ऊपर थे, उनको बात मालूम चल गई, उन्होंने बड़ा गड़बड़ की है। तो वो उनके चाचा हिरण्य मजुमदार को पकड़ने आए जेल में डालने के लिए, वो थे नहीं तो वो रघुनाथ दास को लेकर चले गए। तो रघुनाथ दास को उन्होंने जेल में अपने पास बंद कर लिया। तो रघुनाथ दास जी ने बड़ी अच्छे से चतुरता से उनको बोला मैं तो आपके बेटे के समान हूं, मिलके बात कर लेते हैं, आप कब तक ऐसा करेंगे? तो उन्होंने मेलजोल कराकर मामला सेटल करवा दिया। तो उसके बाद उनके पिता सब बड़े खुश हुए گھر میں خوشی کا ماحول آ گیا کہ اب ہمارا رگوناتھ نارمل ہو گیا ہے. اب خوب یہ دیکھتے ایسے ہمارے جو شروع شروع میں یوتھ فارم میں بھکت آتے ہیں تو ٹی وی دیکھنا بند کر دیتے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کمپلینٹ لے کے آتے ہیں ابھی ٹی وی نہیں دیکھتا. ہیتو لیس لوکنا سوامی مہاراج بتا رہے تھے کہ جب وہ پہلے جوہو مندر میں جوائن کیا انہوں نے اور پھر واپس گئے اپنے گاؤں میں تو ان کا من ہی نہیں لگتا تھا, تو ان کی بہن زور زور سے رونے لگی. بولے کیوں رو رہی ہے؟ بولے بھیا تاش نہیں کھیلتے اب. وہ تاش نہیں کھیل رہے ہیں. تو ایسے اب بچہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا تو کیا کرتے تھے ہمارے ایک یوا ویکتی بتاتے ہیں, ان کی ماتا اس کے سامنے دیکھ بیٹا نئی ہیروئن آئی ہے, دیکھ کیسے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اس نے, دیکھ تو سی کہیں تو اس کی آسکتی ہو جائے, کہیں پرانی واسنائیں جاگرت ہو جائیں. تو ماں کتنا اچھا آدرش روپ لے کر آئی ہے بچے کے سامنے اس کے ہندے کے اندر کی کام واسناؤں کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے گرہ ورت ہو جائے یہ اپنی دڑتا کو چھوڑ دیں. تو جب رگھناتھ داس جی نے گھلنا ملنا شروع کر دیا پریوار والوں کے ساتھ تو پریوار والے بہت خوش ہو گئے کہ ارے ہمارا رگھناتھ بہت اچھا ہو گیا. لیکن رگھناتھ بہت چتر تھے, اندر ہی اندر وہ پریکشا کر رہے تھے کب موقع آئے گا کب موقع آئے گا. اب وہ بہت ان کا جو ویگ تھا بڑھتا جا رہا تھا کہ مہاپربھو سے ملنا ہے, اور ان کو معلوم چل گیا مہاپربھو سے متھرا سے واپس آ رہے ہیں تو ڈھونڈ رہے کیسے ملوں. تب ان کو معلوم چلا کہ پاس میں پانی ہاٹی ایک گاؤں ہے وہاں پر نتیانند گوسائی آئے ہوئے ہیں, بولے چلو ان سے مل کے آتا ہوں. تو پھر وہ نتیانند پربھو سے ملنے گئے. تو جب نتیانند پربھو سے ملنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نتیانند پربھو ایک بہت سندر تلے اوپر بہو بھکت ہنا چھ وستیتا دیکھی پربھور پربھاو رگھوناتھ وسمیتا. بہت بھکتوں کے ساتھ نتیانند پربھو گھرے ہوئے بیٹھے ہیں اور نتیانند پربھو کے پربھاو کو دیکھ کر رگھوناتھ داس بہت وسمت ہو گئے. دنوت ہونا سہی پاڑل کوٹ دورے سیوک کہے رگھوناتھ دنوت کرے. دور سے ہی رگھوناتھ جی اتنے ونمر تھے انہوں نے ان کو پرنام کر دیا. تو ان کے سیوک نے بولا نتیانند پربھو کے سیوک نے رگھوناتھ آپ کو پرنام کر رہا ہے. ہم ہندی کا یہاں لے لیتے ہیں پھر کیول ارتھ پڑھتے ہیں کیونکہ سمے کم ہے. تو چیتنیہ مہاپربھو اور نتیانند پربھو اتیانت دیالو اور ادار ہیں. یہ تو رگھناتھ اس کا سوبھاگیہ تھا کہ جب دور سے انہوں نے پرنام کیا تو مہاپربھو نے بولا کہ تم چور ہو, اب تم میرا درشن کرنے آئے ہو, یہاں آؤ یہاں آؤ آج میں تمہیں دنڈ دوں گا. کون بول رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ جب پربھو نے ان کو بلایا کنتو رگھوناتھ ان کے پاس نہیں گئے تب پربھو نے انہیں بل پروک پکڑ لیا, پکڑ کے اس کے سر پر اپنا چرن کمل رکھ دیا. نتیانند پربھو کے کوتو کی نتیانند سہج دیا مائے رگھوناتھ کہے کچھو ہے سدے. نتیانند پربھو سوبھاؤ سے اتیانت دیالو اور ونودی تھے. دیالو ہونے کے کارن وہ رگھوناتھ داس سے اس طرح بولے. کیا بولے؟ کہ تم چور ہو اور کیونکہ میرے پاس آنے کی بجائے تم دور رہے, اب میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے, اب میں تمہیں دنڈ دوں گا. تو نتیانند پربھو کون سا دنڈ دیں گے؟ دہی چڑوا بخشن کرہا مور گنے شونی آنندت ہیلا رگھوناتھ منے. تم بھوج دو اور میرے سنگیوں کو کیا کھلاؤ؟ دہی چڑوا. یہ سن کر رگھوناتھ داس جی کو کیا ہوا؟ بہت پرسن ہو گئے کہ بھکتوں کی سیوا کا موقع ملا. تو رگھوناتھ جی نے کیا کیا؟ ترنت اپنے آدمی کو بھیجا کہ جلدی سے جا کے کھادے وستر خرید کر لائیں. کیا کون سی کھادے وستر تھی؟ چڑوا اور کیا ہوگا؟ دہی اور چینی اور دودھ بھی تھا
मिठाइयां भी थी, केला भी था और अलग अलग खाद्य सामग्री सब चारों तरफ से जितना ही मार्केट में सब उठा के ले आओ। जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव भोज होने जा रहा है, सभी प्रकार के ब्राह्मण और अन्य सज्जन सब पधारने लगे। चलो जी फीस चल रही है, जैसे यहां पे हम फीस करते हैं तो मंदिर के अंदर कथा में होते हैं 100 लोग और फीस में होते हैं 500 लोग। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है हम देख लेते हैं कथा में कितने हैं, 5 गुणा कर दो, इतने होंगे प्रसादों में। तो सबको मालूम चला फीस चल रही है, सब आ रहे हैं दूर दूर से। अब इतनी भीड़ बढ़ गई तो रघुनाथ ने अन्य गांवों से अधिक खाद्य मार्ग मंगवाने का प्रावधान किया, या कम पड़ेंगे अब दूसरे गांव में भी जो भी सामान है सब लेके आ जाओ। तो वह 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए, घड़े ले आए, उसने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी प्राप्त किए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिड़वा भिगोने लगा। एक स्थान पर इन बड़े मात्रों में गर्म दूध में चिड़वा भिगोया गया, तब आधा चिड़वा दही चीनी और केले के साथ मिलाया गया, आधे भाग को आटे दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में जो चंपा कला कहलाता है मिलाया गया, तभी चीनी घी तथा कपूर डाला गया। एक विशेष प्रकार का केला होता है, आजकल मिलेगा नहीं, आजकल जो दिल्ली में केला मिलता है वो सिंगापुरी केला मिलता है, उसे इंजेक्शन लगा लगा के उसको बड़ा किया जाता है। जो भारत में केला उगता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और भारत में केला बेचने के लिए इम्पोर्ट किया जाता है। तो चंपा कला एक विशेष प्रकार का केला होता है, बंगाल में मिलता है, जिसमें सुगंध आती है। जब नित्यानंद प्रभु अपनी धोती बदल चुके और चबूतरे में बैठ गए तो वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया, 7 बड़े बड़े पात्र दही चिड़वा के। उस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के अधिकांश प्रमुख संगी और साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोले में बैठ गए। तो कृपया करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बीच में कौन बैठे हैं, उनके आसपास कितने पात्र हैं, 7, और आसपास कौन भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उनके विशेष पार्षद। तो भक्तों का नाम भी लेते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होगा। कौन कौन थे इनमें, रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव और पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, होड़ कृष्णदास, इसी तरह उदाहरण दत्त ठाकुर, ये सब नित्यानंद प्रभु के अन्य जो निजी संगी थे वो चबूतरे के ऊपर बैठ गए। उसके बाद उस उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण तथा पुरोहित भी वहां पर आ गए। नित्यानंद प्रभु ने उन सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठा दिया। एक तो उनके मुख्य संगी थे और कुछ ब्राह्मण और पुरोहित आए, उनको भी वो कहां बैठे, चबूतरे पे, प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में चिड़वा तथा आटा दूध था और दूसरे में दही के साथ चिड़वा था। तो 2 प्रकार के दही चिड़वा बनाए गए, एक दूध के साथ और एक दही के साथ। और अन्य सारे लोग, अब चबूतरा फुल हो गया तो क्या हुआ, अन्य सारे लोग चबूतरों के चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए। कोई यह नहीं गंध सका कितने लोग थे, चबूतरे में कुछ बैठे थे और चबूतरे के चारों ओर बैठ गए। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक दही में भिगोवा चिड़वा और दूसरा आटे और दूध में। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिला अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा किनारे चले गए। चबूतरे और चबूतरे के आसपास की जगह फुल हो गई तो कोई बात नहीं भैया, प्रसाद तो आ गया हाथ में, तो लेकर चले गए गंगा के किनारे आराम से, वहां बैठ के खाने लगे। आने लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिला, नित्यानंद प्रभु के साथ चबूतरा फुल है, चबूतरे के आसपास लोग बैठे वो फुल है, गंगा के किनारे में भीड़ ही भीड़ है, अब उनके हाथ में दही चिड़वा क्या करे। तो जिन्हें गंगा किनारे स्थान नहीं मिला वो जल में घुस गए और वहां 2 प्रकार का चिड़वा खाने लगे गंगा के अंदर जाके। इस तरह कुछ लोग चबूतरे के ऊपर, कुछ चबूतरे के नीचे, कुछ गंगा के किनारे, और सबको भोजन बांटने के लिए कितने भक्त थे, 20 भक्त थे, बड़े एफिशिएंट होंगे, केवल 20 लोगों की टीम थी, सबको उन्होंने दही चिड़वा और दूध वाला चिड़वा बांटा। उसी समय वहां पर राघव पंडित आ गए, राघव पंडित चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद है। राघव पंडित जी के घर में बहुत सुंदर विग्रह थे और जब राघव पंडित भोग लगाते थे तो एक राधा कृष्ण का विग्रह होता है और चैतन्य महाप्रभु एक अलग थाली रखते थे। अगर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है और ये पानीहाटी गांव है, ये कलकत्ता के पास है, और महाप्रभु कई बारी स्वयं आकर राघव पंडित के सामने देखते थे, वो थाली में से खाते थे, इतने विशेष भक्त, तो वो वहां पर आए। वहां स्थिति को देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वो हंसने लगे। चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, सबके हाथ में दो मटके हैं और खा रहे हैं, कोई गंगा के तट पे, कोई गंगा के अंदर घुसकर, कोई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के घेरे हुए। तो अब राघव पंडित अपने साथ क्या लेके आए थे, वो अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे जो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और सब भक्तों को वितरित कर दिया गया। तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्च वगैरह को भेंट कर चुका हूं, किंतु आप ये उत्सव में लगे हैं, ये भोजन कौन खाएगा, प्रसाद आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो, रात में तुम्हारे घर के भोजन खाऊंगा। चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं ग्वालों की जाति का हूं, इसलिए समानता मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के बलुए तट पर इस तरह पिकनिक में एक साथ खाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। कौन कह रहे हैं ये, नित्यानंद प्रभु। तो अगर भक्त लोग नित्यानंद प्रभु या बलराम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सब लोग मिलकर खाएं। हम प्रतिदिन क्या बोलते हैं गुरु अष्टकम में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वान तृप्तान हरि भक्त संज्ञान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं जब सारे भक्त लोग मिलकर इकट्ठे मिलकर खाते हैं, हरि भक्त संज्ञान। तो नित्यानंद प्रभु बहुत कह रहे, मैं ये खा रहा हूं ना इस समय पिकनिक के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो महा नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बिठाया और उससे भी दो पात्र दिलाए। इन दोनों में दोनों प्रकार की चिड़वा था। फिर एक बहुत विशेष घटना होती है, नित्यानंद प्रभु स्मरण करते हैं और स्मरण करके किसको बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु की। और नित्यानंद प्रभु ने स्मरण किया और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही और आटे दूध के साथ चिड़वा का आनंद ले रहे हैं, बाकी भक्त लोग नहीं देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, बहुत कम भक्त देख पा रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने अब क्या किया, नित्यानंद प्रभु अब दूत हैं, महाप्रभु के साथ चल पड़े और सब भक्त लोग खा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, प्रत्येक पात्र से चिड़वे का एक कोर उठाया और उसको परिहास करते हुए महाप्रभु के मुंह में डाल दिया, ठूस दिया। भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद है और भक्तों ने पा लिया, भक्तों का महाप्रसाद वापस भगवान को दिया जा रहा है। तो भक्त हर एक भक्त पात्र से नित्यानंद प्रभु ने कोर उठाया और उनके मुंह में ठूस दिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको फिर हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, भोजन का एक कोर उठाया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूस दिया और दोनों हंसने लगे। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वाले के मंडलियों में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव ये तमाशा देख रहे थे। वो देखने में क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु यहां से उठा रहे हैं और हवा में ऐसे कर रहे हैं और उनके यहां से भी कुछ निकला और नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल रहे, कौन डाल रहे उनको मालूम नहीं चल रहा। तो एक बड़ा विशेष दृश्य हो गया। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु खूब हंस रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तो उन्होंने क्या किया या कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग जो भाग्यशाली थे वह देख सके थे कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित है। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर चार पात्र रखे जिनका चिड़वा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान प्रदान किया और उन्हें बिठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिड़वा खाने लगे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देख नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए और नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि के ध्वनि से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हो आया कि किस तरह कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार हैं, यह तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने यह सब व्यवहार स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है, वे इतने शक्तिशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिड़वा खाने आने के लिए प्रेरित किया। तो ये देखिए, ये विशेष कृपा है। अब फिर नित्यानंद प्रभु को अपने चार जो मटके में से अपने सात मटके में से उन्होंने चार मटके रघुनाथ दास जी को दे दिए महाप्रसाद के रूप में। और सायंकाल में नित्यानंद प्रभु किसके पास जाते हैं? राघव पंडित जी के पास जाते हैं और वहां पर वो खूब नृत्य करते हैं। और फिर वहां पर कौन आता है साथ में? कौन आया होगा वहां पर? फिर से चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ खूब कीर्तन करते हैं। और जैसा कि आपको बताया, ये राघव पंडित जी की विशेष उनका ये सौभाग्य था कि वहां पर अक्सर चैतन्य महाप्रभु उनके घर में प्रसाद ग्रहण भोग ग्रहण करने आते थे। तो इसमें बहुत कुछ वर्णन में बताया गया है, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। तो जब ये उन्होंने रात सायंकाल में भी जब प्रसाद ग्रहण कर लिया, तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया और उसके सर पर अपने चरण रखे और उससे बोला, तुम्ही ये कर ऐला ऐ पोली ना भोजन, तुम्हारी कृपा करे गौर कैला आगमन। हे रघुनाथ दास, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहां आए। उसके बाद ये प्रयार है जो कि बोर्ड पर लिखी है, वो हमारे पीछे दोहराइए, कृपा करे कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रि केला प्रसाद भक्षण, कृपा करे केला चीड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रि केला प्रसाद भक्षण, कृपा करे केला चीड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रि केला प्रसाद भक्षण। समय कम है तो हम आपसे दोहराएंगे नहीं, तो इसका अर्थ सुनिए। अपने अहेतुक की कृपा से उन्होंने चिड़वा तथा दूध खाया, तत्पश्चात रात में भक्तों का नृत्य देखकर उन्होंने भोजन किया। कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, ये प्रयार कौन कह रहा है? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? रघुनाथ दास जी को। कि अपने हेतु की कृपा से उन्होंने चिड़ा तथा दूध खाया महाप्रभु ने, तत्पश्चात रात में भक्तों का नृत्य देखकर उन्होंने भोजन किया। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा, घरेलू संबंध तोड़ना देना चाहा, उतनी बार मेरे पिता माता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध कर रखा। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु शरण प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। तो मैं अयोग्य हूं, पतित हूं, मैं बहुत भयभीत हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे चरण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्रदान कीजिए, मुझ पर विशेष कृपा कीजिए। आप मेरे सर पर अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने हृदय की प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के आगे। तो रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले, रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर इंद्र के तुल्य है और चैतन्य महाप्रभु द्वारा रघुनाथ दास पर कृपा होने से उससे यह सब नहीं रुचता। यद्यपि वह ऐसे भौतिक सुख को प्राप्त है, इसलिए तुम सारे लोग उस पर कृपालु हो और उसे आशीर्वाद दो कि वह शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करे। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों का सुगंध का अनुभव करता है, वह सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता, तो फिर स्वर्गिक सुख की क्या बात है। तो इस प्रकार तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को अपने पास बुलाया और उसके सर पर अपने चरण कमल रखे और उससे बोले, हे रघुनाथ दास, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहां आए। क्योंकि तुमने सब भक्तों को प्रसाद खिलाया, इसलिए ये देखकर महाप्रभु आए। अपने अहेतु की कृपा से उन्होंने चिड़वा दूध खाया, तत्पश्चात रात में भक्तों का नित्य देखकर उन्होंने भोजन किया। तो देखते हैं, हम ये समझ सकते हैं इसमें बहुत गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बचपन से उनके हृदय में प्रगाढ़ भक्ति थी और वो हृदय से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करना चाहते थे और बार बार भाग के भी जा रहे थे, फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? उनके अंदर वैराग्य था, उनके अंदर भक्ति करने की दृढ़ता थी और वो रात दिन गौरांग महाप्रभु का नाम लेते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते का जप करते थे। फिर किस चीज की कमी रह गई थी कि वो महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर पा रहे थे? फैमिली बंधन उनके लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, भक्तों की और गुरु की कृपा, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। जब वो नित्यानंद प्रभु के पास गए, उन्हें बोला तुम चोर हो, चोर का मतलब कि डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो महाप्रभु को, तो उन्होंने अपने चरण कमल उनके ऊपर रखे और नित्यानंद प्रभु ने उनको दंड दिया। क्या दंड दिया? मेरे चरणों की मसाज करो। क्या दंड दिया? सभी भक्तों को क्या खिलाओ? दही चिड़वा। और रघुनाथ जी ने खुशी खुशी भक्तों की सेवा की। जब रघुनाथ दास जी ने खुशी खुशी भक्तों की सेवा करी तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु उनको दे रहे हैं कि अब आपको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त हो जाएगी। तो जब तक हम भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो गुरु की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती और गुरु की कृपा से फिर कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम सीधा भगवान को अप्रोच करते हैं तो भगवान अपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। कई कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कई कंपनीज होती हैं जो साथ बीच में एजेंट्स या डीलर्स रखते हैं। तो भगवान अपनी मार्केटिंग एजेंट्स और डीलर्स के थ्रू करते हैं और उनके एजेंट्स और डीलर्स हैं गुरु और भक्तगण। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु ने किन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कहा? किसको खिलाओ? सभी को खिलाओ। ये तो नहीं बोला ना कि जो मेरे विशेष विशेष सीनियर उन्नत भक्त हैं उनको खिलाओ, उनकी सेवा करो। कोई भी ब्राह्मण आ रहे थे, सज्जन आ रहे थे, रघुनाथ दास जी खुले हृदय से उनको खिला रहे थे। इसके बाद ये भी वर्णन आएगा कि रघुनाथ दास जी राघव पंडित से पूछते हैं कि अब इन भक्तों को कितनी डोनेशन देनी है। इस चैतन्य चेता में जब हम पढ़ते हैं तो हमें वैष्णव आचार समझ में आता है। जब भी हम भक्तों को निमंत्रित करते हैं खुले हृदय से उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, खुले हृदय से। खुले हृदय मीन्स खुला हृदय, कंप्रोमाइज नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, हृदय से। और खिलाने के बाद दक्षिणा। अब जो दक्षिणा दे रहे हैं ये नहीं अपनी इच्छा से जो भी दक्षिणा दे दी, वो किसको कंसल्ट कर रहे हैं? राघव पंडित से पूछ रहे कि क्या देना है। तो राघव पंडित ने पूरी लिस्ट बनाई, देखो ये ब्राह्मण आए थे इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, जितनी सोने की मुद्राएं बनी टोटल करके पूरी सोने की मुद्रा। ये मैनेजमेंट देखिए, ये नहीं कि मैं हूं ना, उनके पास कोई धन की कमी थोड़ी थी। लुटा दिया जो चाहे लो, ताकि सब लोग गुणगान करें, वाह कि हुई तो क्या फीस हुई, सबको खुश कर दूंगा मैं। नहीं, ये जो धन है हमारा नहीं है, ये गुरु का है। पूछा राघव पंडित से कितना देना है सबको, बोला इतना इतना दो, उतना दे दी। बोले नित्यानंद प्रभु कितना देना है? इतना दीजिए। तो कुछ सोने की मुद्रा है, नित्यानंद प्रभु खुद नहीं दी, उनके असिस्टेंट को दी, सेक्रेटरी को दी, ये रख लो बाद में बताना, अभी कुछ मत बताना। तो एक वैष्णव एटिकेट समय देखने चाहिए, है ना। तो पूछकर उन्होंने धन दिया। तो प्रश्न वहीं कराया गया जो आपसे पहले प्रश्न पूछा था,
कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किन भक्तों की सेवा की? सभी भक्तों की सेवा की जो उनके समकालीन भक्त थे, उनके जो साथ के भक्त। उन्होंने ढूंढा नहीं कौन सा कोई महाभागवत मिले उसकी सेवा करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो जब तक हम अपने समकालीन अपने साथ में रहने वाले भक्तों को संतुष्ट नहीं कर सकते, हम लोगों का संबंध पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ स्थापित नहीं हो सकता। अगर हम चाहें सीधा ही हम शिला प्रभुपाद, षट गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, बलदेव विद्याभूषण जी से संबंध स्थापित कर ले, ईमानदारी से बताइए हमें से कितने भक्त लोग षट गोस्वामी से, भक्ति विनोद ठाकुर से अपना संबंध अनुभव करते हैं? हैं? कोई करता है? साफ साफ बताए, आप दही चिड़वा खा रहे हैं तो आज अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं, कोई नहीं है हृदय में कोई ऐसी प्रार्थना, कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। कितने भक्त लोग और बड़े बड़े आचार्यों से संबंध स्थापित अनुभव करते हैं? नहीं। जब तक अपने निकट के भक्तों के आसपास हम सेंसिटिव नहीं है, उनके साथ संबंध स्थापित करने की हमारे में इच्छा नहीं है, हम इस दिव्य ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। नित्यानंद प्रभु से केवल प्रार्थना करने मात्र से हम नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमने भजन इस क्लास के शुरू होने से पहले गाया, श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी अंत तक क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र कौन थे? श्रीनिवास उनके मित्र थे, उनके शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य, और श्रीनिवास आचार्य उनके गुरु भाई साथ थे, उनके शिष्य से वो कह रहे हैं इससे मुझे संग चाहिए, और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भक्त का मुझे संग प्राप्त हो जाए। मुझे अपने आसपास के भक्तों के प्रति हम ऐसे ही हैं, छोड़ो ये तो आप में से कुछ कह सकते हैं, प्रभु जी एक बात इसमें बहुत ट्रिकी है, रघुनाथ दास जी उन ब्राह्मणों के साथ रहते नहीं थे और उनके साथ उन्होंने कोई सेवा भी नहीं की, ऐसे तो प्रसाद खिलाना बहुत आसान है, धन उनके पास था ही, खिला दिया, ये क्या है, इसमें कौन सी बात है, है ना। जब हम साथ में रहते हैं, साथ मिलकर सेवा करते हैं, तब हमें मालूम चलता है इनको तो प्रसन्न करना संभव ही नहीं है। वो करूं भी मैं क्यों, इनकी इनकी प्रकृति में जानता हूं, नेचर में जानता हूं, मैं पागल ना क्यों करूं भैया, मैं हम नहीं करूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से भक्तों को तत्व से जान जाते हैं, उनके सारी बुराइयां समझने हमें दिखाई देती हैं, तो हृदय में ये भाव ही उत्पन्न नहीं होते कि इनको मैं प्रसन्न करूं, बल्कि उल्टा भाव आता है कि किस तरह से थोड़ा सा इनको दुखी करूं, है ना, एक बदले की भावना, रोष रहता है हमारे हृदय में। तो आप सोचिए अगर इस तरह के हमारे मन में भाव होंगे तो नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी हमारे प्रैक्टिकली आज हम इस लीला से क्या सीख सकते हैं, हम सिद्धांत पहले समझें कि जब अपने आसपास के भक्तों को हम प्रसन्न नहीं करेंगे, हम पूर्ववर्ती आचार्य और उनसे ऊपर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के नहीं समझ पाएंगे। श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन में बैठ के लीला पर स्मरण कर रहे थे और राधा कृष्ण की लीला को प्रवेश कर गए थे और देखा कि राधा और कृष्ण बहुत परिहास कर रहे हैं और उनकी लीला को देखकर वो हंसने लगे, और सामने से एक ब्राह्मण निकल रहा था जो कि दिखने में कुरूप था, तो उसने ब्राह्मण ने क्या सोचा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने यह अपराध हृदय में लिया, उस रूप गोस्वामी जी की लीला स्मरण भंग हो गई। रूप गोस्वामी जी का कोई इंटेंशन नहीं था कि इस ब्राह्मण का मजाक उड़ाऊं, वो तो लीला स्मरण कर रहे थे, लेकिन जब उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये रूप गोस्वामी जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो वो ऑफेंडेड हो गए, उन्होंने अपराध लिया, तो रूप गोस्वामी जी की लीला स्मरण भंग हो गई। सीधा कनेक्शन है, जब अगर हम आसपास किसी वैष्णव को रुष्ट कर देते हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत दूर की बात है। पहले सिद्धांत को समझे, प्रैक्टिकली कैसे होता है ना आपको पांच मिनट में बताएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। जिस तरह से नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया रघुनाथ दास ठाकुर को कि आप इनको प्रसाद खिलाइए, उसी ढंग से हमें जिन भक्तों का संग मिलता है इसको नित्यानंद प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। भक्तों का संग हमें शुद्ध करने के लिए है, जब हम भक्तों के संग में सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, हमें अपने अनर्थ दिखाई देते हैं, हम अच्छे ढंग से पॉलिश हो जाते हैं, निखर के आते हैं, हमारे जितने अवगुण हमें सारे सामने आते हैं, उसकी सच्चाई का हमें सामना करना चाहिए और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक भक्त अजात शत्रु होता है, भक्त का कोई शत्रु, भक्त किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। लेकिन इसकी बात यह नहीं है कि भक्त के कोई शत्रु नहीं होते। भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन भक्त के फिर भी शत्रु होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो भक्तों से द्वेष करते होंगे, लेकिन भक्त उनसे द्वेष नहीं करता। तो ये आचरण हमारा होना चाहिए, हमारे हृदय में किसी भी भक्त के लिए द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में हम किसी भी भक्त को अपने शत्रु के रूप में ना देखें। हो सकता है वो हमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करे। प्रभुपाद लिखते हैं कि संसार में कई लोग कृतज्ञ नहीं होते, ग्रेटफुल नहीं होते, और अनग्रेटफुल होने के कारण वो भक्तों से शत्रुता ले लेते हैं। भक्त किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग अपने कुछ इच्छाओं के कारण भक्तों को शत्रु मान बैठते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, लेकिन भक्त उनसे द्वेष नहीं करता। तो ये भाव हमें अपने अंदर लाना चाहिए। हम भक्तों के साथ में भी रहते हैं, कुछ भक्त के साथ हमारे जब बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, या उनके साथ हमारा सही आचरण नहीं हो पाता। उस समय हम क्या करें? हम अपने आप को याद दिलाएं, अगर मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, और बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारा आध्यात्मिक जीवन असंभव है। प्रार्थना हो रही है, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। अपने आप को हम दुखी अनुभव करें, क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं है। और नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद सुखी हैं, मैं प्रेम के अभाव में दुखी हूं, कोई प्रेम नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करूं कि मुझे आप मुझ पर कृपा करो। जिस दिन से उन्होंने रघुनाथ दास जी को पकड़ लिया, कृपा अवलोकन, उन पर दृष्टि डाले, आप मुझ पर भी दृष्टि डालिए और दंड दीजिए मुझे। कुछ मेरे लिए क्या दंड है कि जो भक्तों के साथ मैं सेवा करता हूं, रहता हूं, उनको मैं सहन करना सीखूं, उनके प्रति मैं अच्छी भावना लाने का प्रयास करूं। नित्यानंद प्रभु उन्हीं भक्तों में कृपा करते हैं जो अदोषदर्शी होते हैं। तो हम अदोषदर्शी होने का प्रयास करें। हम ये ना प्रयास करें कि सभी भक्तों मुझे बहुत पॉपुलर बनना है। इस इच्छा के साथ जब हम भक्तों से डीलिंग करते हैं कि सब लोग मेरा आरोप चारों तरफ गुणगान करें, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। हर किसी के हाथ हम उनसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने हृदय में किसी भी भक्त के प्रति गलत भावना ना रखें, और प्रत्येक भक्त के दोषों को अगर नजर भी आते हैं तो हम उनको इग्नोर करें, अदोषदर्शी बनने का प्रयास करें। जब तक हम अपने आसपास के भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना सीखते, तब तक हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। रघुनाथ दास जी इतने दृढ़ थे, हम लोग उतने दृढ़ नहीं है। रघुनाथ दास जी में जितना वैराग्य था, हमारे में उतना वैराग्य भी नहीं है। रघुनाथ दास जी बचपन से रो रो कर गौरांग महाप्रभु को पुकारते थे, हम वो भी नहीं है। क्या योग्यता है हमारे पास अगर देखा जाए इस तरीके से? कुछ भी योग्यता नहीं है। तो हमें तो बहुत आवश्यकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा के, हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आसपास के भक्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, अगर हम वास्तव में कृष्ण प्रेम चाहते हैं। अन्यथा ये सब समय निकलता जाएगा और जो असली भक्ति का रस है उससे हम वंचित रहेंगे। तो आज दही चिड़वा के उत्सव पे खूब अच्छे ढंग से हम दही चिड़वा प्राप्त करें, और प्रसाद पाते हुए हम क्या बोलें? हरी हरी, हरी हरी, और इस लीला का स्मरण करें और देखें किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, और उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हुए। और जब बाद में वो पुरी में जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी सब भक्तों के सबसे प्रिय भक्त बनते हैं, सभी भक्तों के वो प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते भी हैं। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी का जीवन बहुत ही सरल और वैराग्य से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन अपने वैराग्य के स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहते थे। तो जो एक थॉटफुल भक्त होता है, जो सोच समझ के कार्य करते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में देखता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वैराग्य अपने जीवन में कैसे अनुकूल करूं। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीतहन गौर भगवान। जितना हम वैराग्य का अनुशीलन करेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन सूखे वैराग्य और तपस्या से हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें
बहुत ही सहनशील और बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा, अपने आसपास के भक्तों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सीखना पड़ेगा, तब जाके हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, दही चिड़वा महा महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।